नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शैलेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार शैलेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आगे बढ़े उससे पहले मुख्य समाचार जान लेते हैं। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। कल एक रोमांचक मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हराया। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स में एन सिक्की रेड्डी और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची और मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार मैथ्यू एबडन का फाइनल मुकाबला कल। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट मैदान से। आईपीएल का मैच चल रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच बेंगलुरु में मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 2 विकेट पर 123 रन बना लिए। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। शैलेश जी, आते आते ही मैंने देखा कि 10 रन बना लिए। पहले 111 रन थे, 14वें ओवर में हम बात कर रहे थे और 2 मिनट के अंदर अंदर 10 रन और जड़ दिए। मैक्सवेल की को शाबाशी मिलनी चाहिए इसके लिए।
मैक्सवेल को शाबाशी मिलनी चाहिए, लेकिन जैसे ही आपने बोला वैसे ही मैक्सवेल आउट हो गए। 124 रन पे अब 3 विकेट हो गए हैं और ग्लेन मैक्सवेल ने पिछले ओवर में जब हम लोग स्टूडियो की तरफ आ रहे थे तो ओवर में एक छक्का मारा, एक चौका मारा, उसी ओवर में एक कैच भी ड्रॉप हुआ, लेकिन अगला ओवर शुरू होते ही मैक्सवेल का विकेट गिर गया। जो मैक्सवेल के बैटिंग की खासियत रही है वो अचानक कुछ भी कर सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर हैं। और मैक्सवेल का विकेट गिरने के बाद एक तरह से आप कह सकते हैं कि केकेआर टीम ने इस मैच में वापसी की है।
बिल्कुल वापसी की है, लेकिन अगर बेंगलुरु की बात की जाए तो अगर पिछले 2 मैच इनके देखे जाए तो विराट कोहली टॉप स्कोरर रहे हैं इनके 98 रन बनाकर, और अब भी वही मैदान पर क्रीज पर जमे हुए हैं।
ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, जो लोग विराट कोहली को बहुत पसंद करते हैं। हम भारतीय ज्यादातर लोग विराट कोहली के फैंस हैं, लेकिन आरसीबी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप एक प्लेयर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो। और आरसीबी में डुप्लेसी हो, मैक्सवेल हो, विराट हो, जो उनका टॉप ऑर्डर है वो बहुत कमाल का है, लेकिन जैसे ही आप नीचे की तरफ आए तो एक दिनेश कार्तिक जो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुके हैं, उनके अलावा उस तरह का कोई प्लेयर नहीं है जो बहुत ज्यादा असर डाल सके। तो जहां पे विराट कोहली जब जल्दी आउट होंगे उस समय आरसीबी का क्या होगा, ये चिंता की बात है, लेकिन फिलहाल चिंता की बात नहीं क्योंकि विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहे हैं।
क्योंकि देखा जाए बेंगलुरु का ये 3रा मैच और एक में उसको जीत एक में हार मिली है, जबकि कोलकाता ने तो आगाज ही अपनी जीत के साथ किया था और अब भी आज भी हावी दिखती नजर आ रही है।
अब जिस तरह से 3रा विकेट गिरा है, अगर विराट कोहली का विकेट मिल जाता है केकेआर को तो इस मैच में केकेआर यकीनन बेहतर पोजीशन में होगी। तो आरसीबी और केकेआर के बीच में जीत और हार का फर्क अभी विराट कोहली बन सकते हैं, जो हाफ सेंचुरी मार चुके हैं, और क्योंकि उसके बाद अगर देखा जाए तो भले ही 20-25 रन बहुत तेजी से बनाने वाले कई खिलाड़ी आरसीबी के पास हैं, लेकिन विराट जो टॉप 3 है उनका, उस तरह का कोई खिलाड़ी उनके पास चौथे पांचवें छठे नंबर पे नहीं है। तो ये एक विकेट क्रूशियल होगा केकेआर के लिए कि अगर वो विराट कोहली को आउट कर पाते हैं तो शायद इस मैच में उनका पलड़ा भारी होगा।
क्योंकि कप्तान डुप्लेसिस भी 8 रन बनाकर आउट हो गए और कैमरन ग्रीन भी 33 रन बनाकर आउट हो गए और ग्लेन मैक्सवेल मतलब आक्रामक बल्लेबाजी के चक्कर में अपना विकेट गंवा गए।
उन्होंने शुरुआत स्लो की थी मैक्सवेल ने, लेकिन जैसे ही वो आक्रामक हुए उसके बाद उनका विकेट गिर गया।
देखा जाए तो बेंगलुरु को कोलकाता के खिलाफ होम ग्राउंड पर पिछले 8 साल से जीत नहीं मिली और आखिरी बार 2015 में मिली थी। तो आज वैसे अगर देखा जाए जो ये मैदान है, कहते हैं कि बैटर जो पहले बैटिंग करता है उसके फ्रेंडली है।
नॉर्मली आईपीएल या T20 मैचेस में ज्यादातर ग्राउंड बैटर फ्रेंडली ही होते हैं। अच्छी बात इस आईपीएल में यह है कि 2 बाउंसर पर ओवर का जो रूल इन्होंने इस बार चेंज किया है उसने बॉलर को बहुत हेल्प की है, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चिन्नास्वामी स्टेडियम की बाउंड्रीज थोड़ी छोटी हैं, पिच उनकी बल्लेबाजों को मदद करती है, तो उस लिहाज से देखा जाए अभी बहुत अच्छा स्कोर आरसीबी का नहीं है, लेकिन विराट कोहली खेल रहे हैं, कई कुछ ओवर बाकी हैं, तो ये उम्मीद करेगी आरसीबी की टीम कि वो 200 के आसपास कहीं फिनिश करे, क्योंकि उससे कम का स्कोर बहुत सेफ नहीं है इस स्टेडियम में।
और कोलकाता की बात करें तो पिछले मैच में जो श्रेयस अय्यर थे उनके कप्तान बिना खाता खोले चले गए, तो आज भी उन पर एक दबाव होगा अच्छा खेलने का।
बिल्कुल दबाव होगा और वो अच्छे प्लेयर हैं और बहुत ही शुरुआत है अभी आईपीएल के, अभी ज्यादा मैचेस नहीं हुए हैं, तो ये उम्मीद करेंगे कि शुरुआत भले ही खराब रहे लेकिन धीरे 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 वो बेहतर फॉर्म में आए। खासतौर पर कप्तान का बेहतर फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। हालांकि केकेआर के बाकी बल्लेबाज भी अच्छे हैं और केकेआर की बैटिंग अगर आप ओवरऑल देखें तो आपको आरसीबी से बेहतर नजर आएगी। हालांकि विराट कोहली अकेले ही बहुत बड़ा फर्क साबित होते हैं, लेकिन आपको नंबर 4, 5, 6, 7 पे उस तरह के अच्छे बैटर्स चाहिए जो T20 में बहुत अच्छा असर डालते हैं और उस तरह के बल्लेबाज केकेआर के पास।
पिछला मैच भी बहुत रोमांचक तरीके से जीता था केकेआर ने और आज जो उनके कार्यक्रम में अंकुल रॉय को भी शामिल किया गया है, तो वो किस तरह से एक बॉलर है एक और किस तरह से चेंज ला सकते हैं?
देखिए जितने सारे मैच है उसमें कुछ लगातार आपको कॉम्बिनेशन बदलना पड़ेगा और अच्छी बात यह है कि आईपीएल में जो लोग डोमेस्टिक में भारतीय खिलाड़ियों ने जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उनको एक अच्छा मौका मिलता है। तो अनुकूल राय पहले भी खेल चुके हैं और कुछ अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, तो उम्मीद करेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि केकेआर के पास जो मैच बदलने वाले प्लेयर हैं वो श्रेयस अय्यर हो सकते हैं, आंद्रे रसेल हो सकते हैं, सुनील नारायण अभी बॉलिंग कर रहे हैं जिनको शायद विकेट मिला है, तो वो हो सकते हैं, तो उनके पास काफी मैच विनर हैं इस टीम में।
और कल के मैच की बात करें तो कल एक रोमांचक मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हरा दिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 185 रन बनाए, जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 5 विकेट पर 173 रन ही बना सकी। तो देखा जाए जो कल के मैच के हीरो रहे वो थे रियान पराग जिन्होंने 45 गेंदों में नाबाद 84 रन बनाए
और वो लगातार बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और यही जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक प्लेयर के डोमेस्टिक उसके कुछ प्लेयर जो आए हैं वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है और रियान पराग के लिए भी बहुत अच्छा है। उनको पिछले साल कुछ समय वो काफी प्रेशर में थे लेकिन इस साल उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की और राजस्थान रॉयल्स भी अगर देखा जाए तो लगातार वो शुरुआत बहुत अच्छी करती है ज्यादातर आईपीएल में। उम्मीद है कि इस बार की शुरुआत को वो आखिर तक लेके जाएंगे,
क्योंकि अगर पराग का देखिए तो जो आखिरी ओवर में उन्होंने 25 रन जड़े तो गेम एक तरह से बहुत गेम चेंजर साबित हुआ ये मैच। पहली लास्ट ओवर में पहली बॉल पर उन्होंने 4 रन, फिर दूसरी बॉल में 4 रन, तीसरी बॉल में 6 रन मारे, चौथी में 4, पांचवी में 6, तो मतलब कमाल कर दिया।
200 के आसपास अगर आपका स्ट्राइक रेट हो, 6 छक्के हो उस पारी में, तो उसके बाद उनकी जो पारी थी उसी ने दिल्ली के लिए बहुत मुश्किल कर दी थी और ऐसा लग रहा था कि मतलब ऋषभ पंत जब तक थे तब तक ये उम्मीद थी कि दिल्ली शायद इस मैच में वापसी करेगी, लेकिन एक बार ऋषभ पंत के आउट होने के बाद फिर ऐसा लगने लगा कि वो गैप इतना बढ़ता गया कि मैच एक तरह से तय हो गया कि राजस्थान रॉयल्स ही जीत रही है।
एक ऋषभ पंत को भी वापसी के लिए एक जीत की अभी जरूरत है, मतलब बहुत उम्मीदें थी कि उन्हें एक नया, क्योंकि जब आप आए इतने बड़ी घटना के बाद तो आपको एक बूस्टअप होने के लिए एक जीत जरूरी है।
शायद अभी शुरुआती मैच है और वार्म अप कर रहे होंगे और ऋषभ पंत जिस तरह के खिलाड़ी हैं यकीनन वापसी करेंगे वो और बहुत अच्छी पारी खेलेंगे, रन उनके बनने शुरू हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो उस तरह की बैटिंग नहीं कर रहे हैं और विकेट के पीछे भी वो ठीक ठाक अच्छी कीपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि उस तरह की पारी देखने को जल्दी ही मिलेगी जिस तरह के लिए ऋषभ पंत जाने जाते हैं।
और कल उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए अपना 100वां मैच भी खेला और अगर आखिरी ओवर देखा जाए तो 6 गेंद पर 17 रन चाहिए थे दिल्ली कैपिटल्स को, तो आवेश ने जो यॉर्कर फेंकी तो उसे सिर्फ 5 रन मिल पाए और उनका जो सपना था जीत का वो चकनाचूर हो गया।
यॉर्कर अगर आपकी सही पड़ रही हो तो रन बनाना बहुत मुश्किल होता है और अच्छी बात ये थी कि आवेश की यॉर्कर सही पड़ी और यॉर्कर के साथ हमेशा खतरा होता है कि वो फुल टॉस की तरह बन जाए, लेकिन अगर आप सही जगह गेंद को पिच कर रहे हैं यॉर्कर तो रन बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे पहले से भी दिल्ली कैपिटल्स का लग नहीं रहा था कि वो उस स्कोर तक पहुंच पाएगी जो राजस्थान रॉयल्स ने बनाया था।
और आपको ये भी बता दें कि कल आईपीएल में लखनऊ में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगी। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की, बैडमिंटन कोर्ट की। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स में एन सिक्की रेड्डी और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने इंडोनेशिया के रेहान नोफेल कुशारजंतो और लीसा आयु कुसुमावती की जोड़ी को 14-21, 21-11, 21-17 से हराया। पीवी सिंधु महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की सुपानिदा कैटेथोंग से 24-26, 21-17, 22-20 से हार गई। महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में अश्वनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें ताइवान की ली चियासिन और तेंग चुनसुन की जोड़ी ने 13-21, 19-21 से मात दी। पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में ध्रुव कपिला और एमआर अर्जुन की जोड़ी का सामना अब से कुछ ही देर में मलेशियाई जोड़ी जे आरिफ और रॉय किंग जाप से होगा। सबसे पहली बात तो देखा जाए पीवी सिंधु से बहुत उम्मीदें थी और बहुत टफ फाइट चल रही थी। पहला सेट उन्होंने जीत लिया, दूसरा थाईलैंड की खिलाड़ी जीत गई और जो लास्ट निर्णायक सेट था बहुत टफ फाइट में हार।
बिल्कुल टफ फाइट थी, लेकिन तीसरे गेम में जिस तरह उन्होंने बढ़त बनाई थी उससे ये उम्मीद की जा रही थी कि सिंधु जितनी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं वो बढ़त के बाद वो वापसी किसी सामने वाली प्लेयर को नहीं करने देंगी, लेकिन अभी भी उनके खेल पे उनकी चोट का असर दिखाई दे रहा है। जो 5 महीने का उनका गैप था और घुटने की चोट थी, वो असर अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि वो पूरी तरह उभर पाई है। और वो एक फिजिकल के साथ साथ मेंटल असर भी होता है, और मेंटली आप इतना टफ है वो आपका धीरे धीरे खेलने के साथ समझ में आता है। तो अभी सिंधु के लिए एक खिताब, चाहे छोटा टूर्नामेंट हो या बड़ा टूर्नामेंट हो, एक खिताब बहुत जरूरी है। और यहां पे कैरोलिना मरीन के हटने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि पीवी सिंधु कम से कम यहां जीतेंगी, और वो इस साल खासतौर पर जब ओलंपिक्स होने वाले हैं तो पीवी सिंधु का फॉर्म में होना भारत के लिहाज से बहुत जरूरी है। जो चोट के पहले भी सिंधु उस तरह के रंग में नजर नहीं आ रही है जो जिस तरह के लिए उनको जाना जाता है, तो उम्मीद करते हैं ज्यादा समय नहीं है पेरिस ओलंपिक्स में, ज्यादा समय नहीं है, उम्मीद करें कि सिंधु कमबैक करेंगे और मेंटली उस चीज से बाहर निकल के उस तरह का परफॉर्म करेंगे जिसके लिए हम उनको जानते हैं।
और क्योंकि उपविजेता भी रही है इस टूर्नामेंट की ये पिछले साल की, तो उम्मीदें कम थी उनसे हार की, और कैरोलिना के हटने से तो और भी उम्मीदें बढ़ गई थी जीत की। फिलहाल ये खुशी की बात है कि एन सिक्की रेड्डी और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने भी एक पहला सेट इंडोनेशिया की जोड़ी ने जीता, दूसरा उन्होंने जीता, और थर्ड जो लास्ट का जो सेट था उसमें बाजी मार गए।
बल्कि देखा जाए तो उनके जो पिछले दोनों मैच हुए हैं वो आसान नहीं थे। कल वाला मैच भी दो गेम में खत्म हुआ था लेकिन बहुत ही क्लोज था। तो फर्स्ट गेम हारने के बाद अगर आप कमबैक कर रहे हो तो ये जो अभी हम लोग सिंधु के लिए बात कर रहे थे मेंटल स्ट्रेंथ की, वो इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने उसमें दिखाई है, और यही कम से कम आज जो अच्छी खबर आई है वो मिक्स डबल्स की ही है।
जी और अब टेनिस कोर्ट के बाद मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबिडन कल फाइनल मुकाबला खेलेंगे। फाइनल में उनका सामना अमरीका के ऑस्टिन क्रेजिसिक और क्रोएशिया के इवान डोडिक की जोड़ी से होगा। रोहन बोपन्ना के लिए तो मुझे लगता है ये साल बहुत अच्छा है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन का उन्होंने खिताब जीत लिया, और अब ये भी देखिए इसमें फाइनल में पहुंच गए हैं, तो जोड़ी बहुत जय और वीरू की जोड़ी साबित हो रही है।
बिल्कुल, दो टूर्नामेंट बीच में जरूर खराब थे लेकिन ग्रैंड स्लैम के साथ साल की शुरुआत करना इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती, और वो भी 44 साल की उम्र में, जब लिएंडर पेस 40 क्रॉस करके करने के बाद जीत रहे थे तो ऐसा लगता नहीं था कि लिएंडर जैसा कोई और होगा, लेकिन रोहन बोपन्ना ने दिखाया कि वो बिल्कुल लिएंडर पेस के रास्ते पे हैं।
और रोहन बोपन्ना जिसे जो सभी 9 एटीपी मास्टर्स इवेंट्स के फाइनल में पहुंचने वाले लिएंडर पेस के बाद दूसरे भारतीय भी बन गए हैं, तो इस उम्र में वो एक नई उपलब्धि हासिल करते जा रहे हैं।
बल्कि युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि लंबी पारी कैसे खेली जाती है, क्रिकेट की भाषा में अगर पारी कहा जाए। 44 साल की उम्र में कभी रोहन बोपन्ना को देख के ऐसा नहीं लगा कि वो कहीं थक गए हैं, वो हटना चाहते हैं, वही जोश वही उत्साह अभी भी उनमें दिखाई देता है। जो उस तरह का भारतीय यंगस्टर टेनिस में उस तरह का उत्साह अभी बाकी नजर नहीं आ रहा जो लिएंडर पेस या रोहन बोपन्ना में दिखाई देता है।
बिल्कुल, और ये बोपन्ना का 14वां एटीपी मास्टर्स 1000 फाइनल होगा। उन्होंने अब तक 25 डबल्स खिताब जीते हैं। और अब आपको जाते जाते बता दें विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी और राष्ट्रीय चैंपियन ध्रुव सतवाला ऑल इंडिया सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक 2024 के अपने अपने मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप कल से शुरू हो रही है, ये 8 अप्रैल तक चलेगी। और अब समय कह रहा है आपसे विदा ली जाए। शैलेश जी आप स्टूडियो में आए और विस्तार से चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद
श्रोताओं, प्रियंका अरोड़ा स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।